मंडल परिक्रमा 25 सालों से चल रही है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में, और हर साल बढ़ती जा रही है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, व्यवस्था और भी अच्छी होती जा रही है, भक्ति भाव बढ़ते जा रहा है। तो सारे संस्था के भक्तों के लिए ये एक अनमोल अवसर है प्राप्त करने के लिए। राधा रमन महाराज और उनके साथ मैंने भक्त हैं जिन्होंने अनेक वर्षों से ब्रजमंडल परिक्रमा की योजना की है, व्यवस्था की है, और अब भी इतने उत्साह से, इतने भक्ति भाव से, इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम सब ब्रजमंडल ब्रजभूमि की कृपा प्राप्त कर सकें। आज यहाँ हम बैठे हैं अक्रूर घाट में, काफी परिवर्तन हुआ है। कई साल पहले हम आए थे, पहचाना नहीं जा रहा है इस स्थान, बहुत कुछ बदल हुआ है यहाँ पे। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को लेकर आए थे, मथुरा जा रहे थे। कंस के निवेदन पर अक्रूर जी कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आ रहे थे। उस समय यहाँ यमुना जी बहती थी, अब काल के प्रभाव से यमुना अभी हट गई है, दूसरे थोड़ी दूर है, 2 किलोमीटर दूर चली गई है, लेकिन पहले यमुना जी यहाँ से बहा करती थी। तो यहाँ पर वो स्नान किया अक्रूर जी ने। अब इस कथा को विस्तार में सुनाने के लिए समय नहीं है, तो केवल संक्षेप में सुनाएंगे कि अक्रूर जी यहाँ यमुना जी में स्नान करने गए, अपना संध्या वंदन करने गए, और उन्होंने वहां अचानक यमुना जी के जल में कृष्ण बलराम को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि कृष्ण बलराम तो पीछे रथ में बैठे हुए थे। तो तुरंत वो रथ की ओर गए, देखा कि वहां कृष्ण बलराम वाकई बैठे हुए हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। दोबारा जल में चले आए यमुना जी में, दोबारा वहां पर श्री कृष्ण बलराम जी को देखा, और इस समय श्री कृष्ण ने महाविष्णु का रूप धारण किया हुआ था, और बलराम जी ने अनंत शेष का, और महाविष्णु अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे थे और उनकी स्तुति वंदना कर रहे थे। देवलोक के निवासी गंधर्व किन्नर इत्यादि तो ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए। फिर वापस जब लौट के आए रथ में, तो भगवान श्री कृष्ण ने हल्के से मुस्कान से उनको पूछा, क्या आपने बहुत आश्चर्यजनक चीज देखी है क्या? तो एक दृष्टि से उनका मजाक उड़ा रहे। तो ये दृश्य यहाँ अक्रूर जी ने देखा, इसलिए इसका नाम हुआ अक्रूर घाट। इसके पहले इस स्थान का नाम हुआ करता था ब्रह्म हृदय। नाम इसलिए आया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का और गोलोक वृंदावन का दर्शन कराया। इस स्थान में ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म नहीं, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन। एकादशी का उपवास समाप्त हुआ और रात को नंद महाराज यमुना जी में स्नान करने आए थे, तो समय गलत था। वरुण देव के सेवकों ने गिरफ्तार कर लिया नंद महाराज को। श्री कृष्ण को जब पता चला कि वो वरुण देव के पास हैं, तो वो तुरंत वरुण देव के लोक में चले गए। जैसे ही वरुण देव ने श्री कृष्ण को देखा तो आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनकी उपासना की और नंद महाराज को तो छोड़ ही दिया, साथ साथ अनेक उपहार आदि श्री कृष्ण को भेंट करिए। नंद महाराज ने तो देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए और वापस लौट के अन्य ब्रजवासियों को वो सुनाने लगे कि उन्होंने क्या देखा था। ब्रजवासियों को भी बड़ा विस्मय हुआ, कहीं हमारे कान्हा, हमारे श्री कृष्ण का इतना आदर सत्कार हुआ वरुण देव के दरबार में, और यदि वरुण देव का लोक इतना ऐश्वर्यशाली होगा और वरुण देव ने हमारे कान्हा के चरणों में प्रार्थना की, तो फिर हमारे कान्हा का जो धाम है वो कितना ऐश्वर्यशाली और सुंदर होगा। तो उनके मन की बात जान ली श्री कृष्ण ने, उनको वहां यहाँ ले आए इस स्थान में, यमुना जी ने स्नान कराया ब्रह्मह्रद में, और उस समय सारे ब्रजवासियों ने साक्षात गुरु वृंदावन का दर्शन किया। वैसे श्री कृष्ण ब्रजवासियों को बताना चाहते थे, अरे तुम वरुण लोक के ऐश्वर्य से प्रभावित हो रहे हो, तुम नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते आप कौन हो, आप तो मेरे नित्य पार्षद हो, आप तो गोलोक वृंदावन में रहने वाले हो, इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य से आप इतने प्रभावित क्यों हो रहे हो। तो ये सारे दृश्य यहाँ पर, ये घटनाएं यहाँ पर हुई। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए आए थे, इस समय यहाँ कोई गांव वगैरह कुछ नहीं था, केवल वन थे यहाँ पे। उनके बाद ही फिर मंदिर शुरू हुए, मदन मोहन मंदिर इत्यादि, इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। तो यहाँ पर इस स्थान में अक्रूर घाट में वो रहा करते थे और फिर इमली तला जाया करते थे, इसलिए ये स्थान बहुत पावन है। यहीं से पास में भाकरोल गांव है, भाकरोल, ये भाक आप सब जानते हैं जो बंगला बोलते हैं और जो मराठी बोलते हैं, ये भाक शब्द आप सब जानते हैं, अन्न को भाक कहते हैं, चावल को। तो यज्ञ पत्नियों ने यहाँ श्री कृष्ण को भाक या अन्न या भोजन अर्पण किया था, इसलिए गांव का नाम हुआ भाकरोल। हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौओं को चराते चराते यही पास कहीं पहुंचे हुए थे। अब ये लीला उस समय हुई जब भगवान ने वस्त्रहरण लीला समाप्त कर ली थी, गोवर्धन लीला इसके बाद होने वाली थी, अर्थात श्री कृष्ण की आयु इस समय लगभग 6-7 साल की हुई होगी और ग्रीष्म ऋतु था, गर्मी थी। तो सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण के पास आए, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणा, कि हे महान भुजाओं वाले बलराम, हे दुष्टों का दमन करने वाले कृष्ण, अभी एक और राक्षस है जो हमारे पेट में बैठा है, उसका दमन आपको करना है। वो क्या है, कौन सा है वो राक्षस? भूख, हमें बहुत भूख लगी है, तो इस दुष्ट भूख का नाश करना। तो श्री कृष्ण समझ गए कि उनके प्रिय मित्र बहुत भूखे हैं, आखिर गौओं को चराते चराते काफी दूर पहुंच गए थे। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ पास में थोड़े ब्राह्मण हैं जो अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, ये कर्मकांड है, तो ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाके मेरे बड़े भाई बलराम जी के नाम में कुछ दान मांग लेना, कुछ प्रसाद पा लेना, यहाँ लेके आओ, हम सब पाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे नाम में मांगना, उन्होंने कहा कि बलराम जी के नाम में मांगना। आचार्य ने कहा है कि हो सकता है कि भगवान कृष्ण के मन में ये विचार आया हो, ये ब्राह्मण तो वैष्णव नहीं है, इसलिए कृष्ण की महिमा को नहीं जानते हैं, कर्म कांड की क्रियाओं में लगे हुए हैं, तो हो सकता है उनके मन में ये विचार आए कि अरे कृष्ण तो एक वैश्य हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम वैश्य को कैसे दान दे सकते हैं, कम से कम बलराम तो क्षत्रिय है, थोड़ा दान क्षत्रिय को दे सकते हैं, वैश्य को कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने ठीक समझा कि ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों के पास जाके बलराम जी के नाम में वो कुछ अन्न मांगे। तो ये सारे बच्चे वहां चले गए ग्वाल बाल। अब ये यानी ब्राह्मण पूरी तरह से मग्न थे अपने अंगिरस सत्र में, अपने यज्ञ में, और थोड़ा बहुत घमंड भी था उनके हृदय में कि हम लोग ब्राह्मण हैं, ऊंचे कुल के हैं, बहुत विद्वान हैं, वैदिक यज्ञों के क्रियाकलाप में बहुत निपुण हैं, और ये बच्चे कौन हैं, ये छोटे छोटे बच्चे वैश्य हैं, गाय चराने वाले हैं, वाले हैं ये सब। तो बच्चे आए ब्राह्मणों के सामने, पहले उन्होंने हाथ जोड़ के प्रांजलि मुद्रा में खड़े होकर संबोधन किया, हे भूमि देवता, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के ही रूप माने जाते हैं ऐसे शास्त्रों का कथन है। तो वो देवता जो भूमि पर निवास करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, तो हम बलराम जी की ओर से आए हैं कृष्ण के आदेश के अनुसार, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया थोड़ा अन्न या भोजन प्रदान करें। तो उन्होंने उन ब्राह्मणों ने देखा भी नहीं उनकी ओर, पूरी तरह से अपने यज्ञ में मग्न थे, तो सोचा नहीं कि बेचारे बच्चे खड़े हैं हाथ जोड़कर। जब बच्चों ने देखा कि हाथ जोड़कर निवेदन करने पर ही नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन फिर भी ना हाँ कहते थे ना कहते थे, देखा भी नहीं उनकी ओर। बच्चों ने कहा कि वैसे हे भूमि देवता, यज्ञ तबाह, अभी थोड़ा थोड़ी प्रशंसा पढ़ा दी, कहा कि यज्ञ संपन्न करने में सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़े विद्वान आप सब हैं, तो कृपया थोड़ा अन्न दीजिए, हम भूखे हैं। तो उस समय भी उन्होंने देखा भी नहीं उनकी ओर, लड़के थोड़े निराश हो गए और भगवान कृष्ण के पास वापस लौट के चले गए। कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण को पता था कि ये ब्राह्मण जो हैं, ये कर्मकांडीय ब्राह्मण हैं, ये वैष्णव नहीं है, वास्तव में ये यज्ञ आदि होते हैं तो इनका उद्देश्य क्या होता, यज्ञों वही विष्णु हो, भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं, और इन यज्ञों के द्वारा हमें भगवान विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करना है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च, भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व यज्ञों का भोक्ता एकमात्र मैं ही हूँ। यज्ञाधा कर्मों यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। गीता में भगवान कहते हैं कि हर एक कार्य वो मेरी प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, फिर वो यज्ञ कहलाता है। परंतु ये ब्राह्मण स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के प्रयास में इतने मग्न थे कि इनको ये सब पता नहीं था। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसकी निंदा की है, अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रैगुण्य विषयावेद निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, निर्दनित्य सत्पस्व निर्योग क्षेम आत्मवान। ये त्रिगुणमय प्रकृति, ये कर्म कांडी, ये सब चीजों से परे हो जाते हैं अर्जुन, ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति और ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति इससे परे हो जाओ और आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो जाओ। तो आध्यात्मिक स्तर क्या है? कृष्ण भक्ति। तो ये वेदों का सार कृष्ण को जानना है। वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यः, इस बात को ये ब्राह्मण नहीं जानते थे दुर्भाग्यवश। और विशेष करके भगवान कृष्ण उनके पत्नियों के ऊपर कृपा करना चाहते थे। तो जब बच्चे वापस आए तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि कोई बात नहीं, ये लोग यज्ञ कर रहे हैं ना, तो अब उनके पत्नियों के पास जाओ जो उनके घरों में बैठे हैं और उनसे निवेदन करना और कहना कि हम सब भूखे हैं। उस समय कृष्ण ने ही कहा कि ये कहना कि मैं भूखा हूं और बलराम जी भूखे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यज्ञ पत्नियां जो हैं वो बहुत अच्छे और शुद्ध भक्त थे श्री कृष्ण। तो यदि वो सुनती कि श्री कृष्ण बहुत भूखे हैं तो उनको कष्ट होता। तो उन्होंने कहा कि कह दो कि हम सब भूखे हैं, फिर निश्चित ही वो तुरंत भोजन प्रदान कर देंगे। तो बच्चे गए वहां पर, देखा कि ये ब्राह्मणी सरिये की पत्नियां बैठी हुई हैं अच्छे अच्छे वस्त्र आदि पहन के। जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम पास में आए हैं, इधर उधर टहल रहे हैं गवों को साथ में लेकर और एक बार बार अभी भूखे हैं, तो तुरंत वो निकल पड़े। जितना भी भोजन, जितना भी प्रसाद उनके पास था वो सब बड़े बड़े थालियों में रख के आगे चल पड़े, बिना सोचे कि यहाँ हमारे परिवार के सदस्य हमें रोकेंगे टोकेंगे, कुछ नहीं सोचा। आपको याद होगा कि वृंदावन में भी जब श्री कृष्ण वंशी वट पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे तो गोपी नदी अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उसी के भगवान श्री कृष्ण के पास वो चले गए। उनके पतियों ने, सास ससुर ने, रिश्तेदारों ने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु गोपियों ने एक नहीं मानी उनकी बात। तो ठीक उसी प्रकार यज्ञ पत्नियां भी श्री कृष्ण के पास तुरंत चली गई। और सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि उनकी भावना कैसी थी। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण का नाम सुना वैसे ही उनका मन श्री कृष्ण की ओर दौड़ते गया। ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। श्री कपिल देव श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में अपनी माता देवहूति से शुद्ध भक्तों के लक्षण का जब वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वभूभाषे मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा वसुं बुधौ। वो कहते हैं कि हे माते, देखो मेरे शुद्ध भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण, जैसे ही मेरे गुणों का वर्णन वो सुनते हैं श्रुति मात्रेण, केवल श्रवण करने मात्र से क्या होता है, मैं जो कि सबके हृदय में विराजमान हूं। मन प्रति अविच्छिन्ना, बिना रुकावट के सीधे स्वाभाविक रूप से उनका मन मेरी ओर दौड़ने लगता है। जिस प्रकार से गंगा का जल स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहने लगता है, यदि बीच में रुकावटें आती भी हैं तो गंगा का जल उसकी ही परवाह नहीं करता, किसी न किसी तरह से इन रुकावटों को पार करके वो समुद्र पहुंच ही जाता है जल। ठीक उसी प्रकार से जैसे शुद्ध भक्त श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं उनके गुण सुनते हैं, उनकी यश आदि के बारे में श्रवण करते हैं, तो उनका मन तुरंत श्री कृष्ण के पास दौड़ के चले जाता है। तो यज्ञ पत्नियां भी ऐसी ही थी। अब इनके बारे में बहुत विशेष बात ये है कि इन्होंने अब तक श्री कृष्ण को देखा नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण क्यों है? बात ये है कि यदि किसी ने श्री कृष्ण को देखा भी नहीं हो अब तक, वो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कैसे बने? तो केवल उन्होंने श्रवण किया था श्री कृष्ण के बारे में वृंदावन की गोपियों के मुख से, और कभी कभी फूल बेचने वाली कोई महिलाएं आती थी, कोई तांबूल बेचने वाले कोई महिलाएं आती थी, जो वृंदावन में भी जाते थे, यहाँ भी आते थे, तो उनके मुख से उन्होंने श्री कृष्ण की महिमाओं को श्रवण किया था। और श्रवण करके उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई थी। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यां वैशूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावहा। इस श्रवण की पद्धति इतनी सुंदर है, इतनी सुलभ है और इतनी लाभदायक है कि केवल श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने से भक्ति उत्पत्ति के पुंसहर की भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाती है। श्री कृष्ण के प्रति जो कि परम पुरुष हैं, और भक्ति जैसे उदित होता है हमारे हृदय में, शोक मोह और भय ये दूर भाग जाते हैं। रुक्मिणी देवी ने भी द्वारका विदर्भ में रहते हुए कौंडिन्यपुर में श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, केवल श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यज्ञ पत्नियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो गया था। और जैसे ही वो चली आई श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे देवियों, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने प्रसाद तो दे दिया। देवियों ने कहा, हम यहां रहना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया जिस प्रकार से श्री कृष्ण गोपियों को भी उपदेश दिए थे, नैतिक विषयों पर कि देखो, तब आप सब गृहस्थी हो, आपके पति परिवार वाले सब घर में हैं, आपका सही स्थान है उनके साथ में रहना, न कि आप उन सब को छोड़ के मेरे पास आओ। तो इसी तरह के उपदेश यहाँ दिए यज्ञ पत्नियों को। यज्ञ पत्नियों ने सुन तो लिया उपदेश, परंतु निवेदन किया कि नहीं, हम वैसे भी तो सब छोड़ के आए हैं और आप तो भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान तो करते ही हैं, तो इसलिए आपको हमें वापस भेजना नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने किसी न किसी तरह से उनको मनाया और कहा कि चिंता नहीं करना, आप सबके परिवार के सदस्य आपको ठुकराएंगे नहीं, आपको पुनः स्वीकार करेंगे। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की। भगवान ने कहा कि देखो, शुद्ध प्रेम जागृत करना है तो इसके लिए केवल मेरे शारीरिक सानिध्य की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि कोई व्यक्ति मेरे सानिध्य में रहे, निश्चित नहीं है कि वो मेरे प्रति प्रेम जागृत करेगा हृदय में, बल्कि मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो मेरे अर्चक ग्रह का दर्शन करता रहे, सेवा करता रहे, मेरे पवित्र नामों का सतत उच्चारण करता रहे, मेरा गुणगान करे, मेरे भक्तों का संग करे, ऐसे करने से किसी व्यक्ति के हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। केवल मेरे सानिध्य प्राप्त करने से नहीं होगा, ये इतना महत्वपूर्ण संदेश है कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान के सानिध्य के बिना हम आध्यात्मिक जीवन नहीं पर नहीं चल सकते। कोई कहते हैं कि यदि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे प्रवचन देने के लिए गीता का, यदि वो हमारे सामने आए तो हम भगवत गीता मान लेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी में और भगवान की दिव्य उपस्थिति में शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता सुनने से और इन आदेशों को अपने जीवन में उतारने से हम अर्जुन की तरह ही शुद्ध भक्त हो सकते हैं। तो फिर यज्ञ पत्नियां वापस चली गई घर में। अब ये अंतर है वृंदावन के गोपियों के बीच में और इन यज्ञ पत्नियों के बीच में। गोपियां वापस नहीं चली गई, लेकिन यज्ञ पत्नियां चली गई। हालांकि दोनों शुद्ध भक्त हैं, गोपियां और द्विज पत्नियां यज्ञ पत्नियां, फिर भी गोपियों का स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल ब्रज की गोपियां ही हैं जो कि श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर सकती है। फिर भी ये यज्ञ पत्नियां शुद्ध भक्त तो थी, निश्चित थी। तब वो वापस चली गई और जैसे श्री कृष्ण ने कहा था वैसे ही हुआ। किसी ने उनको टोका नहीं, किसी ने कोई भला बुरा कुछ कहा नहीं उनसे, बल्कि वहां जब उनके पति गण बैठे थे उनके हृदय में भक्ति भावना जागृत हुई। वो अपने कर्मकांडीय वृत्ति को कोसने लगे। वो कहने लगे धिक्कार हो, जन्म त्रिवृत्त, हमारे तीन प्रकार के जन्म का धिक्कार हो। कौन से तीन प्रकार के जन्म? पहले तो हम अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, ये शौक्र जन्म कहलाता है। फिर हम दीक्षा लेते हैं, प्रथम दीक्षा, और फिर यज्ञ करने के लिए हम योग्य हो जाते हैं, तीसरी दीक्षा। तो ऐसे तीन जन्म माने जाते हैं, जन्म त्रिवृत्त। तो ये ब्राह्मण कह रहे थे धिक्कार हो हमारे इस तीन प्रकार के जन्मों का, धिक्कार हो हमारे दक्षता का यज्ञ आदि संपन्न करने में, धिक्कार हो हमारे ऊंचे कुल का, धिक्कार हो हमारे वेदों के ज्ञान का, धिक्कार हो हमारे व्रत आदि के पालन का, जैसे ब्रह्मचर्य का व्रत आदि, इन समस्त चीजों का धिक्कार हो। अपने आप को ही धिक्कारने लगे। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि उनकी पत्नियां जो हैं वो कृष्ण की शुद्ध भक्त थी और वो लोग नहीं थे स्वयं। अभी वो समझ गए कि वो केवल अपना समय बर्बाद कर रहे थे ये कर्मकांडीय यज्ञ करने में, जबकि सारे आध्यात्मिक जीवन और धर्म का उद्देश्य है श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। तो जब पत्नियां वापस आईं, तो ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने श्री कृष्ण को आज तक देखा भी नहीं है, और ब्राह्मणों को पता नहीं था कि उनकी पत्नियां रोज श्री कृष्ण के बारे में सुना करती थी, ये बात नहीं पता था उनको। ब्राह्मण तो स्वाहा करने में लगे हुए थे, तो उनको पता नहीं था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पत्नियों ने कुछ व्रत नहीं किए हैं, उन्होंने कोई वेदों का पाठ नहीं किया है, कोई तपस्या नहीं की है, यज्ञ आदि संपन्न करने की विधियों के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, और फिर भी आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमा तक ये पहुंच गई। पर ब्रह्म श्री कृष्ण को वो इतनी अच्छी तरह से जान गए, उनके शरण में आकर शुद्ध भक्त बन गए, और हम तो केवल स्वाहा स्वाहा करके रह गए। हमारा अहो सौभाग्य है कि ये हमें पत्नी के रूप में मिले। हमने तो सोचा था कि ये हमारी पत्नियां हैं, लेकिन अब हम जान गए कि वास्तव में ये तो हमारे गुरु हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए। हमने तो केवल हमारा समय बर्बाद कर लिया। उनको बड़ा पछतावा हुआ कि श्री कृष्ण के भक्त हैं ग्वाल बाल, वो हमारे पास आए थे कुछ मांगने के लिए, स्वयं भगवान आए और हमने उनको ठुकरा दिया। कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम कि हम श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए उनको। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो अपने आप को धिक्कार रहे थे, यदि पत्नियों के ऊपर ऐसी बड़ी कृपा भगवान श्री कृष्ण की रही। श्री गरुड़ गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति के पथ में सिद्धि की प्राप्ति साधारणतः सामान्यतः साधन के द्वारा होती है। जैसे हम जिस भक्ति को कर रहे हैं उसे साधन भक्ति कहते हैं, और साधन का प्रयोजन होता है साध्य, कृष्ण प्रेम। तो अधिकतर जो कृष्ण भक्त भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति करते हैं वो साधन सिद्ध होते हैं। अपनी साधन के द्वारा भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। परंतु विरला ही ऐसे भी कोई भक्त मिल जाते हैं जो कृपा सिद्ध कहलाते हैं। कृपा सिद्ध का अर्थ ये है कि तपस्या किए बिना, साधन भजन किए बिना उन्हें कृष्ण प्रेम मिल जाता है। साधन सिद्ध का उदाहरण श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मार्कंडेय ऋषि, और कृपा सिद्ध के लिए उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी का, बलि महाराज का और इन यज्ञ पत्नियों का भी। सुखदेव गोस्वामी ने क्या तपस्या की, जैसे ही उनके मां के गर्भ से वो प्रकट हुए 12 साल के बाद सीधे निकल पड़े ब्रह्मचारी बनने के लिए, और व्यास देव जी उनके पीछे पीछे दौड़ते गए, हा पुत्र हा पुत्र। हालांकि व्यास देव सारे वेदों के रचयिता हैं, वेद के ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी देखिए पारिवारिक आसक्ति कितनी तीव्र होती है कि अपने पुत्र के प्रति स्नेह हुआ मन में और पुत्र के पीछे भागे। तो ये सारी भावना, ये आध्यात्मिक एक चेतना सुखदेव गोस्वामी की कैसे हुई, वो कृपा सिद्ध थे। ठीक उसी प्रकार से बलि महाराज थे, और यज्ञ पत्नियों के संदर्भ में भी ऐसे ही कहा गया है कि उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, केवल उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में श्रवण किया, बस इससे उनकी सिद्धि हो गई। ये स्थान बीच का स्थान है मथुरा और वृंदावन का। यहां कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन जब यज्ञ पत्नियां करते हैं ये अवश्य बहुत ही श्रवणीय है, इनका भाव भी बहुत अनुसरणीय है। तो आइए हम सुन लेते हैं कि जब यज्ञ पत्नियों ने पहली बार श्री कृष्ण का दर्शन किया इसी स्थान में पास में, तो उन्होंने क्या देखा। श्यामं हिरण्यवर्धिनं वनमाल्यवर्धनं धातुप्रवालमटवेशमनोव्रतं विन्यस्तहस्तमितरेण धुमानमचं कर्णोत्पलालककबोधलकाचहासं। ये श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोकों में से एक माना जाता है, जैसे प्रसिद्ध बरहापीडम श्लोक है और वैसे ही ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब यज्ञ पत्नियों ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा, श्यामम बड़े सांवले रंग के थे वो, हिरण्य परिधिम उनके जो वस्त्र थे वो हिरण्य या स्वर्ण रंग के थे, पीतांबर पहने हुए थे भगवान श्री कृष्ण, और साथ 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 में वनमाल्य वनमाला पहनी हुई थी। आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तरह तरह के वनमालाएं पहनते हैं, कभी कभी तुलसी की माला, कभी कभी वैजयंती माला, ये पांच प्रकार के फूलों से गुंथी हुई माला होती है, बहुत प्रसिद्ध माला है। और बर है बालों को उन्होंने जटा के रूप में बांध लिया था ऊपर, और वहां मोर पंख था। धातु प्रवाल, जब श्री कृष्ण वन में प्रवेश किया करते थे तो वन में जो भी धातु आदि मिला करते थे उनसे अपने आप को आभूषित किया करते थे, अलंकृत किया करते थे। अनुव्रतांश नटवेशम, एक नटवर के समान सुंदर जो नृत्य करने वाले हैं वैसे वो प्रतीत हो रहे थे। अनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तम, अनुव्रत मतलब उनके जो मित्र हैं अंश उनके कंधे पर, विन्यस्त हस्तम उन्होंने अपने हाथ रखे हुए थे, और दूसरे हाथ में उन्होंने एक कमल पुष्प को हाथ में लिया हुआ था और उसको घुमा रहे थे। उसे आने के पहले हमें चित्र को पाने के लिए बहुत खोज रहे थे, इसलिए थोड़ी देरी हो गई, ताकि आप सबको वो चित्र न दिखाते। प्रभुपाल जी के ग्रंथ में कहीं तो है लेकिन याद नहीं था किस ग्रंथ में है। तो बहुत सुंदर चित्र है, प्रभुपाद जी के भक्तों ने वो चित्र बनाया हुआ है इस श्लोक का। एक बाल बाल खड़े हैं, साथ में श्री कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से अपने हाथ को उनके कंधे पर रखे हुए हैं, और दूसरे हाथ में कमल पुष्प यूं घुमा रहे हैं। आजकल हमारे सिनेमा के अभिनेता ऐसे नकल करने का प्रयास करते हैं, ये सब विकृत प्रतिबिंब है। जगह जगह सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु असली नायक तो श्री कृष्ण है, और ये जो आजकल के नायक हैं वो सब नकली नायक हैं। नायिका भी श्रीमती राधा रानी, कर्ण उत्पल उनके कानों में उत्पल, उत्पल जो पुष्प है वो भी एक प्रकार का कमल पुष्प होता है, वो कानों में उन्होंने धारण की हुए थे। और अलग का कपोल, कपोल में अर्थात उनके गाल में उनके जो बाल हैं अलग का वो आए हुए थे, इसलिए उनका मुखारविंद ऐसे सुशोभित हुआ था। साथ साथ में मुखाब्जहासन, उनका मुखारविंद एक हल्की से मुस्कान से भी सुशोभित था। तो ये का पहला दृश्य था, श्री कृष्ण का पहला दर्शन था। स्वामी करते हैं तो यज्ञ पत्नियों के उदाहरण से, इनकी लीलाओं से हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं। यदि हम भी केवल श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहें, कीर्तन करते रहें, तो हमारे हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत। यहाँ इस स्थान में यज्ञ पत्नियों के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें कि हमारे हृदय में वैसी ही भावना उत्पन्न हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।